क्या हकीकत है, इसलिए कि हम इसे लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं, क्या हम इसे लिटरल समझें या ये कोई मेटाफर है। हजरत नूह की जो कहानी है ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। इस जमाने में पैगंबर पर सैलाब आया और ना कोई किश्ती बनाई जा सकती थी जिसमें सारे के सारे हशरात अर्ज़ जमा किए जाएं। गर्ज ये कि ये इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है।
आमतौर पर जब मैं इस तरह की चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मौजूदा ज़माने में लोग हर चीज़ पर बहुत तहकीक करते हैं, लेकिन जब मज़हब के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो मालूम होता है कि अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। यानी ये हकीकत है, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने ये देखा है कि बहुत मालूमात होंगी। मुझे अब भी याद है, मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज का तालिब इल्म था, तो हम तालिब इल्मों ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक सोसाइटी है, ब्रेड फिलासफी सोसाइटी, उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जो एक ज़माने में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे, उनको मदऊ किया और उनसे हम ये चाहते थे कि वो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के बारे में, जिसके वो बड़े माहिर थे, गुफ्तगू करें। तो उन्होंने बहुत गैर मामूली गुफ्तगू की, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस मौजू पर जो बहुत अच्छे लेक्चर सुने हैं उनमें से एक लेक्चर उनका भी था। उसके बाद हम लोग बैठ गए, तो चूंकि उनका एक ख़ास मजहबी रुझान भी था तो हमने उनके बारे में भी सवालात करने शुरू कर दिए। तो मालूम हुआ कि वो आदमी जो पब्लिक रिलेशंस के बारे में और जदीद बैन अल-अक़वामी कानून के बारे में आसमान पर खड़ा हुआ गुफ्तगू कर रहा था, वो अब ज़मीन पर आ गया है, यानी कोई चीज़ ही नहीं थी सिरे से। तो आम तौर पर यही होता है, हज़रत नूह के बारे में ये कहानी किसने आपको सुना दी कि वो कुछ सारी दुनिया में तूफ़ान आया था? कुरान मजीद ये बयान करता है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हैसियत से एक कौम की तरफ मबूस हुए, जिस कौम की तरफ उनकी बेइज्जती हुई उस पर उन्होंने अल्लाह की हुज्जत पूरी कर दी। हुज्जत पूरी करने का मतलब यह है कि रसूल की हैसियत से हक को आखिरी दर्जे में वाज़े कर दिया। ये सदियों तक ये काम वो करते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि रसूलों की हैसियत से जिनको भी मैंने भेजा है, मैंने दुनिया ही में फिर उनके मुनकरीन को सज़ा दी है, लिहाजा मैं तुम्हारे मुनकरीन को भी अब सज़ा देने का फ़ैसला कर रहा हूँ। तो जो लोग तुम पर ईमान ला चुके हैं, वो 10 हैं 20 हैं 50 हैं 100 हैं, उनके लिए एक कश्ती बना लो, और ज़ाहिर है कि एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, इससे निकलने के बाद मुमकिन है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इब्तदाई चीज़ें भी मैसर ना हों, तो अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें इसके अंदर रख लो। बस इतनी बात थी जो कही गई। तमाम हशरात और अर्ज़ उसमें रख लिए गए, दुनिया के तमाम जानवर उसमें रख लिए गए। ये कहानी और किस्सा तो लोगों ने सुनाया है, कुरान मजीद में ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान बड़ी सराहत के साथ कहता है कि वो एक कौम की तरफ भेजे गए, उस कौम पर उन्होंने हुज्जत पूरी की, उस कौम के लिए सजा का फैसला हुआ, उस कौम पर तूफान आया, उससे अहले ईमान को बचाने के लिए एक कश्ती बना ली गई। जब लोग उसमें बैठ गए तो उनसे कहा गया कि आपकी ज़रूरत के जितने भी जानदार हैं, यानी जाहिर है कि कल को जब तूफान उतरेगा तो ज़िंदगी शुरू करनी है, तो वो आप किश्ती के अंदर रख लीजिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं उनको इस तरह के मामलात में भी कहानियों और किस्सों के बजाय असल बात को पहले ज़रूर जान लेना चाहिए। बहुत मुअद्दबाना इस मामले में गुजारिश है। सवाल का दूसरा हिस्सा भी था
जी, उन्होंने कही सारा कुछ मेटाफोरिकल नहीं है।
पहले तो मैंने अर्ज कर दिया कि असल चीज ये है, और कुरान मजीद ये बताता है कि बेशुमार पैगंबर आए जिन्होंने इसी तरीके से अपनी कौम पर हुज्जत तमाम की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उनको सजा दी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही हुआ है, उसकी बहुत सी तफसीलात हैं। कौम लूत का जिक्र आप देखते हैं, कौम साले का देखते हैं, कौम हाद का देखते हैं, तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ था, और एक बहुत बड़े इलाके में उसके नतीजे में तूफान आ गया था, और उस तूफान में जो लोग बच गए या जिनको अल्लाह ताला ने कश्ती में सवार करके बचा लिया, उनको अगले दिन जिंदगी शुरू करनी थी। यानी उनके लिए कोई गाय होती, कोई भैंस होती, कोई जानवर होते, कोई परिंदे होते जिनसे वो जिंदगी शुरू करते, फिर एक मरतबे दोबारा वही प्रोसेस तो नहीं शुरू किया जा सकता था उनके लिए जरूरियात फराहम करने का। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये सब चीजें रख लीजिए। इसमें जो गलती लगती है वो ज़ुबान के एक उसलूब को समझने न समझने की वजह से लगती है। देखिए बात यह है कि लफ्ज़ हर है या ऑल है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, या हम अरबी में कहते हैं कुल, तो ये कभी तो सब चीज़ों के लिए बोला जाता है और कभी जो करीब में होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने तो तमाम लोगों को ये बात बता दी है, तो तमाम लोगों से बाज़ औक़ात वो लोग होते हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, تمام سے کبھی مراد ایک مجلس کے شرکا ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ اصل میں ایک خاص پس منظر میں بولے جاتے ہیں. اس سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ طوفان غالباً ایسے آیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر طوفان آ گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منکرین پر طوفان آیا تھا, ان کو میں نے ڈبو دیا تھا, ان کو میں نے سزا دی تھی. یہ کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ اس میں دنیا ساری کی ساری دریا برد کر دی گئی تھی. تو یہ پہلے تو اس کی تصحیح کر لیجئے. دوسرا جو پہلو اس کا تھا وہ معجزے سے متعلق. دیکھیے, خدا جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو آپ آج کے زمانے کا تصور نہ کریں کہ جس میں آزادی ہے اور حریت ہے اور میں یہاں امریکہ کی سرزمین پر بیٹھا ہوا آپ کو دین بتا رہا ہوں. ایک بڑا طویل دور دنیا کے اندر ایسا گزرا ہے جس میں بادشاہوں کا مذہب ہی ریاست کا مذہب ہوتا تھا, اور کوئی شخص اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی گردن مار دی جاتی تھی. پرسیکیوشن کا دور تھا. چنانچہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں, تو فرعون امریکہ کا صدر نہیں تھا, وہ اپنے زمانے کا ایک باجبروت بادشاہ تھا. اس کی زبان سے جو نکلتا وہ روب عمل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح کر کے بھیجا. چنانچہ دو معجزات ان کو دیے گئے تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ خدا دیتا ہے. اس میں اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے, یہ کائنات اس نے بنائی ہے. آپ بحث اس پر کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات ہے یا نہیں. اگر وہ ہے تو اس کو اس پر قادر ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اس ستون کو سانپ میں بدل دے. یعنی پہلے مقدمے کو پہلے مان لیجئے یا اس کا انکار کر دیجئے. اگر کائنات کا کوئی خالق ہے تو کیا وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو گیا ہے؟ اس نے ہماری طرح کوئی پابندی قبول کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کل شین قدیر ہے. اس نے دنیا ایک قاعدے ضابطے میں بنا کر اس کو امتحان کے لیے ایک لمبی مدت میں ڈال دیا ہے, لیکن وہ جب چاہتا ہے اس کائنات میں مداخلت کرتا ہے. وہ ایک زندہ خدا ہے, وہ حی اور قیوم ہے. وہ کہیں فلسفیوں کے محرک اول کی طرح انگلی ہلا کر خاموش نہیں ہو گیا. کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنا اظہار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کرتے ہیں جب ان کے رسول دنیا میں آتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ خود رسول, یعنی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول کون ہے؟ یعنی ایک شخص ہماری طرح پیدا ہوا ہے, ہماری طرح پرورش پائی ہے, ہماری طرح پروان چڑھا ہے, ہماری طرح ہی کھاتا ہے پیتا ہے, ساری احتیاجات لاحق ہیں. خدا اس سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو اس لیے معجزے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ قانون کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اس کائنات میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس کو خدا کے حوالے سے دیکھیے, وہ اس کائنات کا خالق ہے. وہ ہوا اعلیٰ کل شین قدیر, اور وہ اپنے رسولوں کی مدد کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات ان کو مسلح کر دیتا ہے. وہ مسلح کس ذریعے سے کرتا ہے؟ تلوار سے نہیں کرتا, معجزات سے کرتا ہے, تاکہ دنیا میں جن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے اور انہیں اپنی بات سنانے کا موقع مل جائے. جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ایسا کوئی اقدام بھی نہیں.